कोई भी रॉकेट लॉन्च जो होता है वो मुश्किल होता है, कोई आसान खेल नहीं होता है, हजारों मूविंग पार्ट होते हैं, सारे साल काम करने होते हैं, तो कोई भी रॉकेट लॉन्च जो है अपने में बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन जो जीएसएलवी मार्क टू का लॉन्च हुआ था वो खासकर दो तीन मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो रॉकेट जो है वो इंडिजिनसली बना है, उसमें क्रायोजेनिक इंजन जो है वो इंडिजिनसली बना है, और पहली बारी इसमें विकास इंजन का यूज हुआ जो कि एक नया विकास इंजन है जिसका हायर थ्रस्ट है। तो रॉकेट भी कई मायने में नया था, उसमें नई चीजें लगी थी, और इसके संग संग जो सैटेलाइट लेके गया था, ये जो पैसेंजर गया था इसमें GSAT-6 से, वो भी अपने में एक खास किस्म का सैटेलाइट है जो कि सीमलेस कम्युनिकेशन देने में मदद करेगा। तो रॉकेट और सैटेलाइट दोनों ही बहुत अहम और बहुत ही अपने में यूनिक थे। जी
जी पल्लव जी, अभी कहा जा रहा है कि जो सैटेलाइट भेजा है वो इंडिया की एक तो जो मिलिट्री के लिए महत्वपूर्ण होगा और चंद्रयान टू के लिए भी शायद उसकी भूमिका रहेगी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं।
जरूर, इसमें जो विकास इंजन जो विकसित हुआ है, नया विकास इंजन है, विकास इंजन सेकेंड स्टेज में यूज हुआ था, उसका हायर थ्रस्ट है, और ये जब चंद्रयान टू के लिए जीएसएलवी मार्क टू को यूज किया जाएगा तो उसमें पांचों इंजन जो विकास वाले हैं वो पांचों नए अपडेटेड विकास इंजन लगेंगे। जो विकास इंजन लगेंगे उससे आपको हायर थ्रस्ट मिलेगा, 6% ज्यादा थ्रस्ट मिलता है, तो आपको उससे एक अच्छा भला ज्यादा पेलोड भेजने की अंतरिक्ष में गुंजाइश होगी, जो कि खासकर चंद्रयान टू के लिए जरूरत होगी क्योंकि वो 3000 किलो से भी ज्यादा भारी भरकम सैटेलाइट है। ये देखिए GSAT-6A सैटेलाइट जो अभी अंतरिक्ष में छोड़ा गया है उसका एक ट्विन GSAT-6 ऑलरेडी अंतरिक्ष में है, और ये दोनों भाई जो हैं मिलके एक तरह का सीमलेस कम्युनिकेशन देंगे जिससे हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो पाएगा। अगर सिंपल तौर पे कहा जाए तो ये एक सैटेलाइट टेलीफोनी का एक जरिया बनेगा, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है, आर्म फोर्सेस के लिए है। तो अगर इसको समझा जाए तो लद्दाख में टाइगर हिल पे, जहां से कि भारत ने पाकिस्तानी फोर्सेस को बाहर निकाला था, या चाइना के बॉर्डर पे डोकलाम पे, या माओइस्ट इन्फेस्टेड जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है, जहां जहां आपके पास मोबाइल फोन की कवरेज नहीं है, वहां उन रिमोट एरियाज में कनेक्शन देने के लिए, बात करने के लिए, मल्टीमीडिया देने के लिए बहुत एक उपयोगी सैटेलाइट होगा, जब दोनों सैटेलाइट काम करेंगे साथ में, और साथ साथ में हैंड हेल्ड डिवाइस पूरी तरह नंबर्स में आर्म फोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो लार्जली ये जो सैटेलाइट है मोटे तौर पे आर्म फोर्सेस की कम्युनिकेशन की ताकत जो है वो बढ़ाएगा। जी
जी अच्छा पल्लव जी, ये बताइए कि अब तो जीएसएलवी के कई सक्सेसफुल सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुए हैं, तो क्या आप कहा जा सकता है कि वो जो समय था कि जब जीएसएलवी रॉकेट्स के प्रक्षेपण को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी इसरो को, क्या वो समय अब समाप्त हो गया है?
बिल्कुल, देखिए पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को नॉटी बॉय का नाम दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से उसको कहा जाता था करने को वो नहीं करती थी व्हीकल, और वो अक्सर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती थी। तो वो अब नॉटी बॉय नहीं रहा है जीएसएलवी, अब वो टेम हो गया है, और ये सारा कारगर जो है वो जो करंट चेयरमैन है इसरो के K-Sivan साहब, उनके टाइम पे हुआ है। वो पहले इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जब फेलियर हुए, और अब वो चेयरमैन हुए हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जीएसएलवी जो है एक ऑपरेशनल रॉकेट की तरह से और एक रिलायबल क्रेडिबल रॉकेट की तरह से उभर के आ रहा है।
जी, और आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आगे चलते हुए क्योंकि ये भी खबरें हैं कि जीपीएस जैसे होता है वैसे ही भारत का भी एक जीपीएस सिस्टम हो जाएगा जब सारे ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, तो अभी उसमें और कितने प्रक्षेपण बाकी हैं उस सिस्टम को ऑपरेशनल करने के लिए?
ये जो सैटेलाइट अभी प्रक्षेपित किया गया GSAT-6 से, ये नेविगेशन पर्पज के लिए नहीं है, ये कम्युनिकेशन के सैटेलाइट है, जो भारत का लोकली मेड इंडिजिनसली मेड कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम है जिसको नाविक कहते हैं। वो सातों सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं, और वो नाविक सिस्टम जो है अपने ऑपरेशनल स्टेटस की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसमें एक सैटेलाइट का नुकसान हुआ है हाल में, तो अभी अगला लॉन्च जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अप्रैल में होने वाला है कुछ ही हफ्ते में, उसमें वो एक स्पेयर सैटेलाइट जो है नाविक का छोड़ा जाएगा, तो सातों ऑपरेशनल सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने की उम्मीद है, और वो देसी या स्वदेशी जीपीएस जिसको बोला जा रहा है वो अपनी जगह पे काम करने लगेगा। तो अभी भी उससे सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन हाँ पूरी तरह से कारगर जब वो सातवां सैटेलाइट भी आ जाएगा तब हो पाएगा, और वो पूरी होने की उम्मीद है, अप्रैल में उसका प्रक्षेपण होना है।
एक आखिरी सवाल आपसे पल्लव जी, कि आगे जाते हुए क्या GSLV रॉकेट जो है क्या उसका भी इस्तेमाल भारत कमर्शियल पर्पसेस के लिए कर सकता है, क्योंकि फिलहाल भारत का जो PSLV रॉकेट है वो दूसरे देशों के सैटेलाइट छोड़ने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है, तो क्या GSLV भी उस स्तर पर पहुंच रहा है कि उसे भी यूज किया जा सके?
देखिए अभी GSLV जो है उसके प्रक्षेपण कम हुए हैं, केवल 12 प्रक्षेपण हुए हैं, उसमें से 4 फेल हुए हैं, और अभी भी भारत की अपनी जो नेशनल नीड है वो काफी ज्यादा है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक इसको कमर्शियल एरिया में उतारने के लिए इसरो नहीं तैयार होगा। और दूसरा, जो बाहर के देश या कोई और क्लाइंट होगा जो कि इस GSLV को हायर करना चाहेगा, उसको भी अभी टाइम लगता है इस पे भरोसा करने में, अभी 12 हुए हैं उसमें से 4 तो फेल हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर स्पेयर कैपेसिटी होगी तो मेरे को उम्मीद है कि आगे इसरो जरूर GSLV को भी कमर्शियल लॉन्चेस के लिए अवेलेबल करा देगा। लेकिन हाँ GSLV जो है वो बड़ा रॉकेट है, 2 टन अंतरिक्ष में GTO में भेजने की काबिलियत है, 4 टन लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की काबिलियत है, तो उस तरह के रॉकेट की अभी शायद दुनिया को बहुत कम जरूरत है, क्योंकि बड़े 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 रॉकेट Ariane 5 जैसे हैं जो कि 5-6 टन को भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो जब तक वो हैं तो मेरे ख्याल में अभी क्लाइंट जो है वहीं जाएंगे, फॉरेन क्लाइंट्स, लेकिन हाँ इसरो जरूर उससे औरों का प्रक्षेपण करेगा जब स्पेयर कैपेसिटी होगी उनके पास।
पल्लव जी, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद।